रुद्र यज्ञ भी बहुत रखते हैं, फिर बैठ करके पूजा करते हैं, वो सभी है भक्ति मार्ग। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु जब कोई एक्ट में भी आए, कड़े से कड़ा है काम, फिर लोह मोह भी कोई कम नहीं है। लोह मोह में होने से भी जैसे कि बंदर बन जाते हैं, बंदर में विकार जास्ती होते हैं ना, इसलिए दिखाते भी हैं सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर की। कहते हैं बाबा आपको याद नहीं कर सकते हैं। अब बाबा को याद नहीं कर सकते हो तो क्या बंदर को याद करते हो? बाबा जानते हैं इनकी क्या अवस्था है। और किसकी क्या अवस्था है, योग में रहते हैं व नहीं रहते हैं, शिकल से ही मालूम पड़ जाता है। पाइप ऐसे की चीज उठाकर भी अपन को बंदर सिद्ध कर देते हैं। बंदर क्या करता है, घूंगरे डालो तो उठा लेगा और रतन डालो तो फेंक देगा। बाप समझाते हैं सख का चोर तो लख का चोर हो जाता है। चोरी तो बहुत प्रकार की होती है, परंतु चोर तो दोनों ही ठहरे। अब ये है बेहद का स्कूल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने नाम सुना है तो लगाई दिया है विश्वविद्यालय। वास्तव में विश्वविद्यालय तो एक ही है। क्यों? क्योंकि सारे विश्व को चेंज करने वाला ये एक ही बाप है, इसी विश्वविद्यालय में। नाम किसने लगा दिया है विश्वविद्यालय? दुनिया वालों ने, ब्राह्मणों की दुनिया वालों ने नहीं नाम लगा दिया है। तो सारे विश्व को चेंज है कर सकेंगे क्या? जो सारे विश्व को चेंज करने वाला बाप है उसी का पता नहीं है। समझते हैं 69 में गया। बाप अभी दैवी राज्य का फाउंडेशन डालते हैं क्या? ब्राह्मणों का तो राज्य होता ही नहीं है, ब्राह्मणों का सिर्फ धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना तो होती है, लेकिन ब्राह्मणों के राज्य का फाउंडेशन नहीं पड़ता। ब्राह्मण सब सेवाधारी है, और अभी किस बात का फाउंडेशन पड़ रहा है? अभी ब्राह्मण को देवता बनने वालों के राज्य का फाउंडेशन डालते हैं बाप। ये तो आखिरी दुनिया है ना, ये दुनिया है अल्पकाल के लिए। मर जावेंगे फिर थोड़े ही उस फाउंडेशन में आवेंगे। इस फाउंडेशन में जो नई दुनिया का फाउंडेशन, नई दुनिया के राज्य का फाउंडेशन, नई दुनिया की जो राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो मर जावेंगे वो उस फाउंडेशन में नहीं आवेंगे। कौन से फाउंडेशन में? जो पहली डायनेस्टी है उसमें नहीं आवेंगे, बाद में आवेंगे। बहुत बलवान है, फिर जैसे कर्म किए होंगे उसी अनुसार जाकर जन्म लेंगे। अभी ये पैसे आदि हैं, ये सब हैं अल्पकाल के लिए। पैसे वाले मनुष्यों को सारा दिन चिंता लगी रहती है, और कोई न कोई रोग लगा रहता है। तो फिर ये धन भी क्या काम का? बात तो तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी हेल्दी बनाती, तो फिर ऐसा बनना चाहिए ना। नरक में तो अगर हेल्दी होते नहीं, ये वंडरफुल खेल है, पढ़ाई भी वंडरफुल है और स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी यहाँ तो है सब माया के वंडर। कौन से है ये दुनिया में सात वंडर से दिखाए हुए हैं, ताजमहल, चीन की दीवार, झूमती मीनारे में स्थिति आदि आदि, तो बाहरी दुनिया की बातें हुई। ब्राह्मणों की दुनिया में सात वंडर कौन से? सात वंडर हैं जो मनुष्य मनुष्य ब्राह्मण मनुष्यों ने बैठे बनाए। ब्राह्मणों की दुनिया में धमाका बैठ गया है, प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर, मेले, कॉन्फ्रेंस, लिटरेचर, ये सात बड़े बड़े बंदर से हैं ब्राह्मणों की दुनिया के। लेकिन इन सबसे बड़ा बंदर बाप का बंदर है। कौन सा? जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करते हैं, तो उनके सब हैं माया के बंदर। माया की मत पर बनाए हुए। बाप ने कभी ऐसे डायरेक्शन नहीं दिया। इन विनाशी वंडर्स का विनाश हो जाएगा। पिछाड़ी में जब तुम्हारी योग की अवस्था हो जाएगी तो फिर बाद में एकदम सन्नाटा हो जाएगा। योग बल वाले जो होंगे वो कब कोई बातों से डरेंगे नहीं। ज्ञानी डर जावेंगे लेकिन योग बल वाले डरेंगे नहीं। वो जिस्मानी डॉक्टर सारी तो पाई पैसे की, अल्पकाल के लिए हार्ट आदि कुछ ऑपरेशन आदि कर लेते हैं। यहाँ तो एकदम सोल को आयरन एज से गोल्डन एज बनाया जाता है। आत्मा तो अभी नाती है परंतु वो आत्मा अब पतित बन गई। फिर उनको पावन जरूर बनना है। कई बच्चे लिखते भी हैं कि हम आत्मा फलाने नाम वाली, आत्मा के शरीर का नाम फलाना है, हम आत्मा फलाने नाम फलाने पोजीशन वाली है। बाप भी कहते हैं अपन को आत्मा समझो। आधा कल्प का जो शरीर है अभिमान रहा भरा हुआ है वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक योग नहीं लग सकता। तो दे अभिमान को निकालना पड़े नहीं तो योग लग ना सके। मूल बात है अपन को आत्मा समझ पावन बनना है। हम आत्मा पावन थे फिर पावन बनना है। इनको कहा जाता है याद की यात्रा और इसी में मेहनत है। अच्छा इनकी मीठे शिकील रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बतादा का याद कर गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्कार। तीन सौ उनहत्तर नंबर के रजिस्टर में 78 पेज पर
20-69 के पैसे क्लास मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही हैं। जयंती एक ही मनाई जाती है और जिस एक ही जयंती मनाई जाती है उसको फिर सर्व जाति कह देते हैं। अगर सर्व जाति हुआ तो एक कहाँ हुआ, और जयंती मनाई जाती है तो जरूर है जन्म दिवस को साकार का ही मनाया जाएगा। सर्व की जयंती तो हो नहीं सकती है। जयंती कब मनाई जाती है, जब के गर्भ से बाहर आते हैं। बाहर आना मन प्रत्यक्ष होना, ऐसे नहीं गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तब जयंती मनाई जाती है, नहीं। जब प्रत्यक्ष होती है बाहर आती है तो जन्म दिन मनाया जाता है। शिव भी आत्मा है तो सन 36 में जब शिव ने प्रवेश किया बुद्ध रूपी पेट में तब की यादगार है शिव जयंती या तब की यादगार है जब प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया में कोई साकार शरीर के द्वारा। जयंती मनाते तो जरूर है, अब तुम मनाते हो 33वीं से शिव जयंती 59 में तुम मनाते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि 33वीं शिव जयंती है, अब तुम मनाते हो 33वीं शिव जयंती कब 69 वो या 33 वर्ष हुआ जयंती को। शिव को जन्म लिए कितने वर्ष हुए 33 वर्ष। जन्मदिन तो सभी को याद रहता है ना, है तो नहीं याद रहता है। फिर अगर 33 साल हुए शिव को जन्म लिए तो ब्राह्मणों को जन्मदिन याद होगा कि कौन से दिन शिव बाबा ने जन्म लिया, याद होगा उसके आने का प्रवेश करने का और जाने का पता पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता। जन्मदिन तो सभी को याद रहता है, फलाने दिन ये गर्भ से बाहर निकला। अब उनकी तुम शिव जयंती 33वीं मनाते हो, फिर बोला उनकी ब्रह्मा के बाजू में बैठा हुआ है, इनकी नहीं किनकी, उनकी तुम दुनिया वालों की तो बात छोड़ो, तुम मनाते हो 33वीं शिव जयंती। अब वो तो है निराकार जिसकी तुम जयंती मनाते हो, तो वो जो निराकार है उनकी तुम शिव जयंती कैसे मनाते हो, शिव जयंती कैसे हो सकती है, कैसे का जवाब है, कैसे हो सकती है, कैसे का जवाब निराकारी स्टेज में ही वो प्रत्यक्ष होगा। वो तो आत्मा जाकर शरीर में प्रवेश करती है, तब जयंती मनाई जाती है बाद में। इतने बड़े बड़े मनुष्यों को निमंत्रण कार्ड आदि जाते हैं, कोई को तो पूछना चाहिए जयंती कैसे मनाते हैं, कौन कौन कैसे मनाते हैं। अरे निमंत्रण कार्ड कौन भेजते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया वाले ही भेजते हैं ना। तो इतने लोगों को निमंत्रण कार्ड जाते हैं कोई पूछता ही नहीं कि तुम शिव जयंती शिव की कैसे मनाते हो, 35वीं शिव जयंती लिख देते हो, कोई पूछता भी नहीं। उसने जन्म कब और कैसे लिया, न निमंत्रण देने वालों को पता और न लेने वालों को पता। उसने जन्म कैसे लिया, कब लिया, फिर उनके शरीर का नाम क्या रखा, शरीर का विग्रह का मूर्ति का नाम भी तो होना चाहिए, वो क्या रखा। इतने पत्थर बुद्धि है जो कब पूछते भी नहीं है कौन, अरे निमंत्रण लेने वाले, समझने के लिए पूछना तो चाहिए ना। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती मनाते हैं है? अब वह तो है निराकार, जिसकी शिव जयंती मनाते हैं वो तो है निराकार, उनका नाम ही है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो, इस शरीर में शालिग्राम, नाम तो शरीर का पड़ता है, शालिग्राम आत्मा का तो नाम नहीं पड़ता। बच्चा जन्म लेता है तो नाम आत्मा का पड़ता है या शरीर का पड़ता है, शरीर का पड़ता है। वो तो है परमात्मा शिव। अभी दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो शिव बाबा की कैसे प्रवेशता होती है, उनकी जयंती ही गाई जाती है, उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं है, बल कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, लेकिन कब प्रवेश करता हूँ, किस घड़ी प्रवेश करता हूँ वो तो बताते नहीं। तिथि तारीख दिन आज नहीं बताते, जैसे बरसी मनाते हैं बस, जन्म पत्री आदि होती ही नहीं। देखो जन्म पत्री इनकी सबसे ऊंचे है, इनकी जो बाबा की जन्म पत्री सबसे ऊंचे है। कहते भी हैं प्रभु तेरी महिमा परम अपार है, तो जरूर कुछ तो करते होंगे ना है? तो जैसे और धर्म पिताएं आए और चले गए और दुनिया नीचे गिरती चली गई, ऐसे ही शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए 69 में चले गए और किया कुछ भी नहीं, कुछ तो करते होंगे ना, जो सारी दुनिया सब धर्म के लोग उसको याद करते हैं। महिमा तो बहुतों की गाई जाती है, नेहरू आदि की भी महिमा गाते हैं, इनकी महिमा कोई बता नहीं सकता। तुम कहते हो वो पाप ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वो तो एक ठहरा ना, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हो। पत्थर बुद्धि इतने बन गए हैं जो कुछ भी समझते नहीं। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, तो सर्वव्यापी होकर के है या एक व्यापी होकर के है। और तुम मनाते हो तो कोई पूछने का भी साहस नहीं रखते हैं, नहीं तो पूछना चाहिए ना। शिव जयंती गाई जाती है, महिमा की जाती है, जरूर हो करके गए हैं। बहुत भक्त लोग हैं, गवर्नमेंट भी नहीं जानती, तो इन भक्तों साधुओं आदि के स्टैंप गवर्नमेंट नहीं बनाती। अगर जानती होती किसको, अगर शिव की जयंती को असली रूप में जानती होती तो गवर्नमेंट भी इन भक्तों और साधुओं के टेम्पल नहीं बनवाती। परंतु जैसी है गवर्नमेंट वैसी है रैयत। गवर्नमेंट भी अंधश्रद्धालु अंधश्रद्धालु और रैयत भी अंधश्रद्धालु। अभी तो तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी का आपकी रीत मालूम है। बायोग्राफी माना बायोग्राफी किसकी होती है? बिंदी की। मूर्ति की होती है, साकार की होती है ना। तो तुम बच्चों को बाप की बायोग्राफी अच्छी रीत मालूम है। तुमको जितना फखुर रहता है और कोई को नहीं रह सकता। तुम ये कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सभी जयंतियां कौड़ी मिसल। क्यों कौड़ी मिसल? कैसे? जिनकी बुद्धि कौड़ी में ही रमी रहती है तो उनकी जयंती भी कौड़ी में सर। और शिव बाबा तो हीरो है, हीरो पाठधारी में आता है। तो हीरो पाठधारी में आने वाले शिव बाबा की जयंती भी हीरो में ही हीरा में चले। हीरे में और कौड़ी में क्या फर्क है? हीरा चमक मारता है, लाइट मारता है, ज्ञान की रोशनी मारता है, और कौड़ी भी अंधेरा ही अंधेरा, खोखला ही खोखला। तो शिव जयंती है हीरे मिसल और बाकी मनुष्य मात्र की जयंतियां हैं कौड़ी मिसल। सबकी बुद्धि कैसी बन गई? बुद्धि में कौड़ी की याद करते करते कौड़ी मिसल बन गई। कृष्ण जयंती मनाते हैं इस समय, उनको भी तुम कौड़ी तुल्य समझते हो। इनको कृष्ण जयंती को बापी आकर के कौड़ी तुल्य को हीरे जैसा बनाते। श्री कृष्ण बाप द्वारा इतना ऊंच पद पाया इसलिए उनका हीरे तुल्य जीवन क्या क्या होता है तो तुम जानते हो। पहले जरूर कौड़ी तुल्य होगा, फिर बाप ने हीरे तुल्य बनाया। ये सभी मनुष्य नहीं जानते कि इनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया। तो ये भी समझाना चाहिए ना। क्या कृष्ण की तरफ इशारा किया, इनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया? अब सतयुग का कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस होगा या सतयुग का ही प्रिंस होगा? वो तो सतयुग का प्रिंस होगा। वर्ल्ड का जो प्रिंस होगा वो तो सारी वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त होगा। अंग्रेज लोग भी उसको क्या कहकर के याद करते हैं, लॉर्ड कृष्ण। इसका मतलब विनाश होने से पहले उस लॉर्ड कृष्ण की प्रत्यक्षता क्रिश्चियंस के बीच में भी हुई थी, जो क्रिश्चियंस लोगों में भी उसकी मान्यता है। नहीं तो सचगु में तो क्रिश्चियंस होते ही नहीं। तो इनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया? ये सभी बातें समझाना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, सप्तमी नहीं मनाते। क्या मनाते हैं? जन्म अष्टमी। अष्टमी क्यों मनाते हैं? कृष्ण जैसे सात बच्चों का जन्म हो जाता है, शास्त्रों में भी क्या दिखाया है, कृष्ण जैसे सात बच्चों का नंबर वार जन्म होता है, फिर आठवां नंबर कृष्ण जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है, वो सबसे पावरफुल होता है। तो सात बच्चे कौन से हुए? जो सतयुग के सात नारायण हैं, सम कलाओं वाले, वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं। यादव और कौरव कुल पहले प्रत्यक्ष होता है, یعنی ودرمیوں میں کنورٹ ہونے والے جو پرنس ہیں ستیو کے وہ پہلے پرتکش ہو جاتے ہیں. ستی کنورٹ ہونے والی آتما پہلے پرتکش ہوتی ہیں اور دیو آتما بعد میں پرتکش ہوتی ہیں. اسروں میں اور دیوتاؤں میں بڑا کون دکھایا جاتا ہے؟ اسروں کو بڑا دکھایا جاتا ہے اور دیوتاؤں کو چھوٹا دکھایا جاتا ہے. تو دکھاتے ہیں کرشن جنماشٹمی مناتے بھی ہیں. تو جو مناتے ہیں بھکتی مارگ میں کرشن جنماشٹمی وہ کس سمے کی یادگار مناتے ہیں؟ ضرور سنگم یوگ کی ہی یادگاریں سب تیوہاروں میں منائی جاتی ہیں. سنگم یوگ میں آٹھویں نمبر پر کرشن بچہ پرتکش ہوتا ہے, پرتکشتا روپی جنم لیتا ہے. سب اگنی 69 میں جب شریر چھوڑا کرشن والی سول نے برہما نے سب کوئی وہ کرشن پرتکش ہوا نہیں. اس سمے تو وہ آتما پرویش کرتی ہے. مما بابا کی سول تم بچوں میں پرویش کر کے پارٹ بجاتی ہے. پرویش کا تو نمبر واری ہوتی ہے. جن کو ہم کہتے ہیں باپ دادا تو دادا مانا برہما کی سول تو پرویش تو کرتی ہے لیکن پرتکش نہیں ہوتی ہے. پرتکش کب ہوتی ہے؟ پرتکش ہوتی ہے تب جب کرشن بنام برہما کی سول جو دادا لیکھراج کے روپ میں پارٹ بجائے رہی تھی اس کے 100 سال پورے ہو جائے. 100 سال کب پورے ہوتے ہیں؟ دادا لیکھراج برہما میں پرویشتا کب ہوئی؟ وہ کتھا کتھے تو براہمن کو سمجھتے ہیں. 36 میں, 36 میں اگر پرویشتا ہوئی پھر تو ان کو مجھنا نہیں چاہیے. بناس کا ساکشاتکار کر کے رونا نہیں چاہیے. ساکشاتکاروں کی بات سے ان کو کلیریفیکیشن خود بخود ہو جانا چاہیے. لیکن ان کو کلیریفیکیشن نہیں ہوا. اپنے گرو سے پوچھا کوئی جواب نہیں ملا. وارانسی میں گئے بڑے بڑے ودوان پنڈت آچاریوں سے پوچھیں گے وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں ملا. آخری نے گیان سوری کو ادے کہاں سے ہونا ہوتا ہے؟ پورب سے. تو پوری بنگال میں جہاں ان کی پرانی دکان تھی, پرانی گدی تھی, وہاں ان کا جو بھاگیدار تھا بہت سمجھا ہوا, بہت وفادار بابا نے جس کے اوپر اپنا سارا کاروبار سونپا ہوا تھا وہی ان کی بدھی میں بیٹھا اور وہاں سے ان کو اپنے ساکشاتکاروں کا سارا کلیریفیکیشن مل گیا. کلیریفیکیشن دینے والا وہ بھاگیدار نہیں تھا. اس کے اندر کون تھا؟ شیو بابا تھا. تو باپ ہوتا ہے گپت. بچوں کے سامنے پہلے ماں پرتکش ہوتی ہے کہ پہلے باپ پرتکش ہوتا ہے؟ ماں پرتکش پہلے ہو جاتی ہے. بیج بونے والا باپ گپت رہتا ہے. ماں جانتی ہے, بچے بچے نہیں جانتے. تو یگ کے آدھی والا جو ویکتی تو تھا جس کی پرتکش تھا بابا نے مرلیوں میں 66 کے بعد کی پرجاپتا کے روپ میں. پہلے پرجاپتا شبد نہیں تھا. مما کے شریر چھوڑنے کے بعد بابا کو احساس ہوا کہ یگ میں یہ سب برہمن نمبر بات کارن یا کارن چھوٹ گیا تب یہ پرجاپتا شبد ایڈ کیا گیا. اس کے کار سم بعد میں کھلے. بابا کی بدھی میں بھی بعد میں کھلا کہ اصلی وقت تو وہی تھا. تو 36 میں تو شیو بابا نے بھاگیدار میں پرویش کیا. और मुरली कब से चलाई गई? वाणी में बोला हुआ है कराची से मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। दस पंद्रह पेज बैठ करके सुबह 2 बजे लिखते थे और बात लिखाते थे, यानी शिव बाबा किसी व्यक्ति के द्वारा लिखाता था और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। तो कराची से जो मुरली निकलती चली आई उससे साबित हुआ कि मुरली के द्वारा ही परमात्मा बाप प्रकट होता है। उनमें बाप भगवान प्रवेश करता है, पता कैसे चलता है? मुरली ने जवाब दिया है, जब वाणी चलाते हैं, जब ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है, तो ऐसा ज्ञान तो कोई सुना ही नहीं सकता। तो कराची में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस कराची से परमात्मा बाप सुबह ब्रह्मा के द्वारा वाणी चलाना शुरू किया। उसी समय से साबित होता है कि ब्रह्मा में तो बाबा ने पहली बार प्रवेश किया, यानी 47 में ब्रह्मा की एक पुष्टि हुआ सकती ज्ञान प्रति अवस्था थी, ऐसे नहीं 36 में थी। तो 46 से 47 में जब वान प्रस्थी अवस्था हुई तो बाबा ने प्रवेश किया, तो 100 साल का पूर्ण होते हैं 88 नवासी, 1 साल रूंग का और दिया गया। वही ब्रह्मा की सोल, वही किस्म की सोल जो 69 में शरीर छोड़ती है, 100 साल उसके पूरे होते हैं 1 में। और वही संगम जी कृष्ण के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रकट होने लग सकती है। कृष्ण बच्चे के द्वारा ही परमात्मा शिव को प्रकट होना है, बाप तो बच्चे के द्वारा प्रकट होता है। बाप की प्रत्यक्षता स्वयं नहीं होती, भले 36 हो 76 हो, तो बाबा की जयंती का असली समय है, लेकिन वो भी वास्तव में प्रवेशता की बात है, प्रत्यक्षता की बात नहीं, क्योंकि बाप का विरोध है, बाप और बच्चे के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। तो कृष्ण की सोल जब 100 साल आयु पूरी करती है, माने ब्रह्मा मृत्यु लोक में खलास हो जाता 100 साल आयु पूरी होने पर, तो कहां जन्म लेगा? मृत्यु लोक पूरा हुआ तो जरूर अमर लोक में जन्म लेगा। हमारे लिए अमर लोक और मृत्यु लोक इसके भी दो अधिक अर्थ है। मृत्यु लोक माने घड़ी घड़ी निश्चय निश्चय हो जाना हमारा मृत्यु लोक में, और अमर लोक में जो कृष्ण का चित्र दिखाया है, कैसा चित्र दिखाया है? हाथ में स्वर्ग का गोला है और पांव में नरक का गोला है, नरक की दुनिया को लात मार रहा है, हाथ मुंह में मर गई दुनिया, और स्वर्ग की दुनिया जैसे बुद्धू की हथेली पर पीढ़ी पर वैश्य के मासिक रखी हुई है, पूरा प्लान बुद्धि में रखा हुआ है कि नई दुनिया कैसे आने वाली है। ऐसा प्रश्न कब प्रत्यक्ष होता है? भक्ति मार्ग में तो भक्त मार्गी है, ब्राह्मणों ने सिर्फ चित्र लगा दिए, उन चित्रों में लिख दिया श्री कृष्ण आ रहे हैं, ऐसा चित्र देखा भी नहीं देखा। श्री कृष्ण के पुराने पुराने चित्र जो बनाए गए हैं उनमें ये लिखा हुआ है श्री कृष्ण शीघ्र ही आ रहे हैं, अब चित्र संसार से बनते चले आ रहे, लेकिन वो शीघ्र पूरा नहीं हुआ, पूरा भी होना चाहिए ना, तो वो दिव्य जन्म की बात है। दिव्य जन्म रूपी प्रत्यक्षता कृष्ण की सोल की होती है 88 में 89 में भागवत के द्वारा ही किसे प्रत्यक्ष होता है। भागवत में ना जो भगाने की कथा है, कोई बाहर पकड़ के भगाने की बात नहीं, बुद्धियोग से पावर से, बुद्धियोग की पावर से भागने की बात है। उसकी शुरुआत कब होती है? एडवांस पार्टी होती नहीं, तो बाकी सभी जयंतियां हैं सॉरी निकल। प्रश्न है वर्ल्ड का प्रिंस, तुमको फिर डर नहीं हो सकता किस बात का? बच्चा तो माता के गर्भ से ही निकला, फिर दिखाते हैं उनको टोकरी में डाल कर ले जाते हैं टूटा के, तो कौन सी टोकरी है? ये तो राम वाले व्यक्तित्व की बुद्धि रूपी टोकरी है, जिस बुद्धि रूपी टोकरी में कृष्ण वाली आत्मा बैठी हुई है। कब से प्रत्यक्ष होती है? प्रत्यक्ष होती है एक ही नहीं की, तो उसको डर आएगा जो टोकरी में डाल करके ले जाते हैं। अरे फूल टोकरी की बात हो रही है, ये तो बुद्ध भी की सोच में तो एक छोटी बात है। वहाँ कंसादी कहाँ से आए? कहाँ कसी भी किस्म की बात नहीं है। कौन से किस्म की बात है? संगनी भी किस्म की बात है। टोकरी में डाल करके छुपाने का मकसद क्या? कहाँ से जो हताशुर बतासुर कंस की जरा सिंधी है वो उसको उठना पहचान पाए। ये सभी बातें शास्त्रों में लिख दी है। किसने की यादगार? संगम की यादगार है। ऐसे थोड़े ही सती भी कैसे के साथ कोई कंसी जरा सिंधी होती है जिनका उनको डर हो। अभी तुमको अच्छी से बैठ करके समझाना चाहिए क्या कि सती जी कृष्ण अलग और संगमी जी कृष्ण अलग? शास्त्रों में किसकी महिमा है? संगमी जी कृष्ण की सारी महिमा है या सती जी कृष्ण की सारी महिमा है? संसी जरा सिंधी के साथ जो कृष्ण दिखाया है उसी की सारी महिमा है, और वो होता ही है संगमी जी में। ब्रह्मा बनाम सत्य की सोली हुई राम वाली आत्मा में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही शंकर है। तो समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। अभी एक जैसा तो सभी नहीं समझाए सकते। युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब इसी गंती मनाई जाती है तो जरूर अनुसार ही वही वर्णन करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा पड़ेगी, और कुछ भी नहीं पूछेगा। अभी शिव जयंती मनाते हैं उनकी महिमा क्या है? उनकी भी जरूर बायोग्राफी चाहिए ना, जीवन चरित्र होगा ना। हिंदी का जीवन चरित्र होता है क्या? और वो जीवन चरित्र भी ऐसा हो जो किसी मनुष्य मात्र का नहीं, कोई भी वो कार्य करके नहीं दिखा रहा हो जो उसके जीवन चरित्र में दिखाया गया। दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र बड़े से बड़ा धर्म पिता महात्मा नई दुनिया नहीं बनाता है। ये शिवता ही ऐसा जीवन चरित्र है कि अपने जीवन में रहते रहते नई दुनिया बनाता है और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए मनुष्य बनता है। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ का, तो बाबा का जैसे बात समझाते मनुष्य को कोई पूछते भी नहीं जिसे जयंती कैसे शुरू हुई। अभी तक भी मनाते रहते छप्पनवीं त्रयोदशी मूर्ति शिव जयंती, चौवनवीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। पूछना तो चाहिए कि 54 वर्ष हुए तो किस आधार पर तुम कहते हो कि 54 वर्ष हुए? पूछने वाले पूछते हैं और जवाब देने वालों को जवाब भी देना नहीं आएगा, क्या जवाब देंगे? तो जवाब है कि हम त्रयोदशी को ही क्यों मनाते, जैसे भक्ति मार्ग वाले मनाते चले आ रहे हैं, वैसे ही भक्ति मार्ग की परंपरा के आधार पर ब्राह्मणों ने मनाने शुरू कर दिया। कोई आधार पक्का नहीं है। तो उनकी जयंती का कुछ वर्णन नहीं करते हैं। महिमा तो अपरमापार गाई जाती है ना। तो बाबा को भोलानाथ कहा जाता है। किसका नाथ? भोलों का नाथ। भोलानाथ कहकर के बहुत महिमा करते हैं। तो जरूर भोलों का नाथ बना होगा ना? क्या नहीं है शिव शंकर भोले भाले। नाम में शिव पहले तो महिमा में भी भोला पहले।
नाम में शंकर शब्द बाद में, तो महिला में भी भाला शब्द बाद में, क्यों? क्योंकि सुर तो भोला ही पाठ बजाता है और शंकर शंकर भाले का पाठ बजाता है, है दोनों ही ऐसी शरीर में, तो ये अलग अलग पाठ कैसे है? उसके लिए हर हर और उसके लिए दम दम, ये अलग अलग महिमा क्यों करते हैं? हर माना पापों को हरने वाला, और दम दम माना दम फटाका करके सारी दुनिया का विनाश कराई देता है। वो तो भोला भंडारी शिवशंकर कहे देते हैं, यानी उनके लिए शिव भी भोला है बच्चों के लिए और शंकर भी भोला है। शंकर को भोला ना तो समझ लेते हैं, जो नहीं है भोला उसको भोला ना तो समझ लेते हैं। वास्तव में भोला नाथ है, शंकर तो नहीं है। क्या भोलों का नाथ शंकर नहीं है? वो किनको कंट्रोल करने वाला है? वो यादवों का हेड है या भोलों का हेड है? भोले देवताएं होते हैं या यादव होते हैं? देवताएं भोले होते हैं और यादव हो रहे, तो उनको भोला कोई नहीं कहेगा। उनके लिए तो कहते हैं कि आंख खुलने से भी विनाश कर देते हैं। क्या उनकी तो आंख बंद ही बनी रहे सो बढ़िया, उनकी है शंकर जी की, शंकर की आंख खुली और रिजल्ट क्या होगा? विनाश ही विनाश। कहते हैं गतूरा खाते हैं, क्या खाते हैं? गतूरा। गतूरा की मैं क्या विशेषता होती है? भटूरे का जो फल होता है उसमें बाहर से ढेर सारे कांटे होते हैं और अंदर उसमें काले काले बीज होते हैं, वो काले काले बीजों में विष भरा हुआ होता है। क्या तुझे रुद्रमाला के जो 108 बीज है वो सारे के सारे ही विषैले जन्म जन्मांतर के राजा हैं। भारत में जितने राजाएं पतित हुए हैं, दुर्विचारी बने हैं, इतना दुनिया के और राजा दुर्विचारी नहीं बने। तो ज्यादा से ज्यादा पतित और गली जात में ये बन जाती है। तो उनका जो संगठन है वो फल के रूप में दिखाया जाता है, वो फल शिव के ऊपर अर्पण किया जाता है। मैंने वो पूरी की पूरी रुद्रमाला शिव के ऊपर शिव के गले का हार बनती है, वो हुआ भटूरे का फल और फूल भी चढ़ाते। क्या भटूरे का फल भी चढ़ाते हैं तो फूल भी चढ़ाते हैं? फूल कैसा होता है? फूल में सुगंध नहीं होती, दुर्गंध आती है और दुर्गंध तो दुर्विचार की आती है, छेद बड़ा होता है। ये दुर्विचार की जो दुर्गंध आती है ये कोई फूल भटूरे के फूल की बात है क्या? ऐसे चैतन्य आत्माओं की ही बात है। तो कहते भटूरे का फल आदि खाते हैं, भटूरे का फूल उन पर चढ़ाते हैं, उनको फिर भूला ना की कैसे जाएंगे? उनको जो भटूरा ही चढ़ाए जाते हैं, मेहनत की एक ही रुचि है। तुमको शिव के मंदिर में भी जाए समझाना चाहिए, वहां से बहुत भक्त लोग आते हैं जो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। कहते भोला भंडारी शिव बाबा, अरे शिव और शंकर का भेद तो शिव ने बताया। शिव आदि की पूजा होती है शिव के मंदिरों में, तो वहां जाए समझाना चाहिए। तो हम आपको शिव की जीवन कहानी बताते हैं। कौन सी कहानी? शिव के जीवन की कहानी बताते हैं। लिखना भी ऐसे चाहिए, हम परम पिता परमात्मा शिव की जीवन कहानी आपको सुना देंगे। जीवन कहानी, जीवन कहानी बिना जीवित हुए हो सकती है क्या? नहीं। जीवन कहानी अच्छे सुन करके तो ऐसा माथा चक्रत हो जाएगा। है जीवन कहानी लेकिन पूरी जीवन कहानी कैसे सुना देंगे? क्योंकि वो तो समझते हैं निराकार मन बिंदु। वास्तव में निराकार का अर्थ क्या है? साकार का अर्थ क्या है? साकार माने देहाभिमानी के स्टेज में रहने वाला, और निराकार माने निराकारी आत्मिक स्टेज में रहने वाला। तो मनुष्य वंडरफुल बातें सुन करके बहुत आ जाएंगे क्या? उनको प्रदर्शनी लगाने की दरकार नहीं पड़ेगी। काम धाम लेकर के इधर उधर दौड़ते फिरो, मेले में लाखड़े लगाने की कॉन्फ्रेंस करने की दरकार नहीं पड़ेगी, कोई भी और एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार नहीं पड़ेगी। तुम असली बात सुनाओ तो लोग अपने आप आएंगे। अंदर सुन बातें सुनकर के बहुत आएंगे। बोलो, इस निमंत्रण पर जो आएंगे उन्हें तो हम निराकार परम पिता परमात्मा शिव की जीवन कहानी बता देंगे। गांधी आदि की बायोग्राफी सुनते हैं अभी हम सुनेंगे शिव की क्या कहा। हम गांधी जी की महिमा नहीं करेंगे, न इंदिरा गांधी जी महिमा करेंगे। उनके अंदर डर भरा हुआ है, पाप किए हैं तो डर भरा हुआ है, और न गांधी जी की महिमा करेंगे। हम किसकी महिमा करेंगे? हम करेंगे शिव बाबा की महिमा। हम ब्रह्मा जी की शंकर की भी महिमा नहीं करते, महिमा किसकी है सारी? शिव बाबा की। तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। एक की महिमा तो दूसरे से नहीं हो सकती। ये तो मंडप बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते हैं, वो कोई शिव का मंदिर छोड़े ही है क्या? जो प्रदर्शनी आदि का मंडप बनाते हैं वो कोई शिव का मंदिर नहीं है। उनका मंदिर मन क्योंकि कोई यादगार नहीं है। वो यादगार कैसी? शिव का मंदिर बनाते हैं उसमें शिव की यादगार दिखाई है? क्या यादगार दिखाते हैं? दिखाते हैं चारों तरफ देवताएं बैठी हुई है, गणेश हनुमान जैसे जानवर बुद्धि देवताएं भी बैठी हुई है, और अच्छे अच्छे देवताएं भी बैठे हुए हैं, और बीच में शिव बैठा हुआ है। ये यादगार हुई पुराने की, वहां किसी पूजा होती है? वहाँ और देवताओं की पूजा नहीं है, किसी पूजा है? एक शिव की ही पूजा है। सब किसको मानते हैं? एक शिव को ही मानते हैं। ऐसे नहीं वहाँ से दीदी दादी दादाएं बैठे जाएंगे उनकी भी पूजा होने लगेगी, नहीं। तो एक शिव की पूजा किसी दूसरे की पूजा मंदिर में नहीं है, तो बीच में बैठा हुआ है। तुम तो जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में ये है, वहाँ रचयता खुद बैठ करके रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। वो प्रदर्शनी का मंडप तो कोई शिव की यादगार नहीं है। सच्ची सच्ची यादगार कौन सी है? यह है रचयता पात्र खुद बैठ करके रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तुम लिख सकते हो रचयता के जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज अथवा हिस्ट्री हम आपको सुना देंगे। ऐसी लिखत हिंदी अंग्रेजी में हो और बड़े बड़े मनुष्यों के पास जाएंगे तो मनुष्य बंदर खा लेंगे। ये कौन है जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते? फिर रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई फिर नहीं रचना रुचि, परंतु नहीं क्योंकि तो संज्ञान है बात ताकि तुम कोई आकर के सावन मनाते हैं क्या समझा ना? कि बाप पतितों से आकर के सावन बनाते हैं ऐसे नहीं,
कि ब्रह्मा के तन में आए और आकर के चले जाएं, ज्ञान सुना करके फिर पावन बनते रहेंगे याद करते करते। नहीं, क्या बताया, पाप पतितों को आकर के पावन बनाते तो मनुष्य वंडर खा लेंगे। पावन बनाने के लिए आने की क्या दरकार, ज्ञान सुनाने के लिए आए, ये तो बुद्धि में बात बैठती है उनके, लेकिन ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि पावन बनाने के लिए भी उनको आना पड़े साकार। मनुष्य अंदर खा लेंगे तो देखिए मंदिर में तो बहुत जाएंगे, हाल या मंडप बड़ा होना चाहिए। तुम बल प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी इन्हें लक्ष्मी नारायण को राज्य, इन्हें लक्ष्मी नारायण को राज्य कौन देते हैं वो समझाना है। मेरा था उसके अलावा जो कभी आत्माओं का बात है उनकी हम जीवन कहानी बताते हैं, वो आकर के हमको राज्य सिखलाते हैं। ऐसे से विचार का अगर मंथन करना है तो ऐसे सिर के मंदिरों में जाए सर निश्चर है, क्योंकि तो मंदिर में सवेरे जाकर के पूजा आदि करते हैं, तो बाबा भी प्रभात के समय आते हैं। खास करके सवेरे जाकर के पूजा क्यों करते हैं, नहीं अच्छा होता नहीं सर, अच्छा भी क्यों होता है, अच्छा इसलिए होता है कि जब ज्ञान सूर्य उदय होना होता है संसार में तभी वास्तव में परमात्मा सुबह प्रत्यक्षता रूपी जन्म संसार में लेते हैं, उनकी असली प्रत्यक्षता तब ही होती है तब जब संसार में उनको प्रत्यक्ष होना होता है। ऐसे नहीं कि 76 में प्रत्यक्ष हो गया, वो तो विदेशियों ने पहचाना, जो विदेशी बीज रूप आत्माएं हैं वो पहचानती है बाप को पहले, लेकिन रात्रि के 12 बजे तो कोई सूर्य उदय होता नहीं, भारतीय परंपरा में सूर्य का उदय कब माना जाता है, सुबह से 4 से 6 के बीच में, और विदेशियों में विदेशियों की बुद्धि तीखी होती है इसलिए वो रात्रि के 12 बजे से सूर्य का उदय मानते हैं। तो 76 में भी वास्तव में सौरा सूर्य ज्ञान सूर्य उदय नहीं होता, 88-89 में भी प्रत्यक्ष नहीं होता, बाल प्रश्न है, बाल सूर्य की प्रत्यक्षता होती है लेकिन वो सिंगल प्रश्न है, प्रश्न अकेला है तो निवृत्ति मार्ग का हुआ या प्रवृत्ति मार्ग का हुआ, तो निवृत्ति मार्ग का होगा 16,000 को जो पीछे भागता पड़ेगा, असली कोविड की मार्ग देवता कर्म का छोड़ेगी ना, असली कब हुआ केवल प्रवृत्ति में हो, कृष्ण और राधा दोनों की नीति दिखाई जाए, मैंने लक्ष्मी महल का जब राज्य आता है तब असली प्रत्यक्षता होती है, श्री बाबा जी बात तो बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है और कोई के द्वारा तो प्रत्यक्ष हो न सके, तो पीरियड कब कौन सा होता है, टाइम कौन सा होता है, अमृत लीला सवेरा हद का नहीं, बेहद का अमृत लीला, तो सवेरे जाकर के शिव के मंदिर में पूजा आदि करते हैं, क्यों दोपहर में क्यों नहीं बताया, रात में क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब प्रत्यक्षता होगी तभी तो उसकी पूजा करेंगे, सेवा शुश्रूषा करेंगे, अगर बुद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं होगा कि वो एक व्यापी कैसे है और सर्व व्यापी कैसे नहीं है तो पूजा भी कैसे करेंगे, अब विचारी पूजा भी करनी हो तो कैसे करेंगे, बुद्धि में मालूमात होगी तभी तो करेंगे, के मंदिर में सवेरे जाकर पूजा आदि करते हैं तो प्रभात के समय आते हैं ना, आधी रात नहीं कहेंगे, क्या कहा तो सत्यनारी वाले जो समझते हैं आधी रात में शिव जयंती असली होती है, उस समय तो तुम सुनाई नहीं सकेंगे, के समय आधी रात के समय 76 में तुम सुनाने जाओ तो बड़े मठपंथ जहाँ इकट्ठे हुए पड़े हैं दिल्ली में वहाँ भी कोई सुनने वाले नहीं होंगे सुनाए भी नहीं सकेंगे सभी मनुष्य सोए हुए रहते काहे में अज्ञानी निद्रा में सोए हुए पड़े तो उस समय कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी बात रात को फिर भी मनुष्य से फुर्सत रहती है बच्चियाँ आदि भी जलती है रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए तो दादा आकर के तुम आत्मा को जगाते हैं ना तो सबसे सच्ची दीवानी दीपमाला तो ये है कौन सी जब कि तुम आत्मा होता है ज्योति की दीपक जगता है ज्योति माना कौन सी ज्योति ज्ञान की ज्योति काहे का ज्ञान काहे की जानकारी बाप की जानकारी ये दुनिया कहती है कि बाप सर जाती है ब्राह्मण भी दुनिया वाले भी कहते हैं क्या कहते हैं बाप गर जाती कहते हैं कोई कहते नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट कैसी है कहते नहीं है मुख से कि दुनिया 40,000 वर्ष अभी चलेगी लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट क्या कहती है जब कंक्रीट से मकान अंडरग्राउंड बनाते हैं एक्ट तो यही कहती है कि दुनिया अभी बहुत लंबी चली तो सबकी सबकी दीप माला तो ये है दीपकों की माला माला कहो संगठन कहो बात तो ये हो गई विरुद्ध माला का संगठन जब तैयार होता है तो एक एक दीपक नंबर वार जगता जाता है हर एक घर का दीप जगता है आत्मा की ज्योति जगती है तो घर में दीवा जलाते हैं वास्तव में दीवा कहाँ जलता है ये है? ये मन मंदिर है ये शरीर ही क्या है हम ब्राह्मणों का ये शरीर ही मंदिर है उस शरीर रूपी मंदिर में शिव बाबा की असली याद रूपी दीवा जगता है ये कोई दीपक नहीं है जो मिट्टी को बनाए देते हैं मिट्टी के दीपक बनाने का अर्थ क्या हुआ ये शरीर क्या है मिट्टी है इसलिए वो बक्सी मार दिए मिट्टी का दीपक बनाए देते दीपावली का वास्तव में अर्थ ही है कोई कोई सा दीपक तो बिल्कुल ही जगता नहीं है और कोई का सबसे पहले जग जाता है दीपावली में भी सबसे पहले कौन सा दीपक जलाया जाता है बड़ा दीपक पहले जलाएंगे एक दिन पहले दीपक जलाते हैं उसका नाम रखते हैं जम का दिया किसका दिया यमराज का दिया वो पहले जगता है वो तीसरा लेते पहले खुलता है फिर उसे एक बड़े दीपक से मिलाते जाते हैं संपर्क संसर्ग होता जाता है और आत्मगुरु की दीपक ढेर से ढेर जगती जाती है तो कोई कोई कहते दीपक बिल्कुल जगता ही नहीं अभी तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है दीपमाला ही तुमको इससे सिद्ध करनी है सभी का दीपक जग जाता है कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं तो कहाँ अंधियारा ना हो जाए और भक्ति मार्ग की रसम है कहाँ की